तभी तो होगी सारे विश्व में शांति की स्थापना।
ओम शांति। स्वाभिमुख कार्यशाला कार्यक्रम का ये प्रथम सत्र है। व्यापार और उद्योग से जुड़े हुए आप सभी भाई बहने यहां पधारे हैं। समाज के सभी व्यवसाय और वर्गों में यह वर्ग अपने आप में एक विशेष है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है जो भगवान ने भी एक व्यापारी का तन माध्यम के रूप में लिया है। आप सबको पता होगा पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिसका पूर्व नाम दादा लेखराज, वो भी एक हीरे जवाहरात के व्यापारी थे सिंध हैदराबाद में। कलकत्ता में भी उनका बहुत बड़ा बिजनेस था हीरे जवाहरात का, और वे ही कॉर्पोरियल मीडियम साकार माध्यम बने उस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा के, जिसके द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और हमारा प्रतिदिन जो यहां ज्ञान मुरली का क्लास होता है, उस महावाक्यों में भी आता है कि व्यापारी भाई बहनों में दो विशेषता होती है। एक तो उसके अंदर कमाई करने की सेंस होती है, समय को, परिस्थिति को, बात को, व्यक्ति को भांप लेते हैं पहले से, और प्राप्ति कैसे कर लें वो एक विवेक और समझ की विशेषता आप लोगों में होती है। और दूसरा, रोज आप अपना हिसाब निकालते हैं, पोतामेल लिखते हैं, सारा दिन कितनी कमाई हुई, कितना खर्च हुआ और कितना बैलेंस बना, वो हिसाब आप जरूर निकालते हैं। कोई भी व्यक्ति खोट के लिए बिजनेस नहीं करता है, नेचुरली प्राप्ति के लिए ही हर कोई बिजनेस करते हैं। और इसलिए इस बात पर सदा अटेंशन रखते हैं कि हमारी कमाई क्या हुई, खर्च क्या हुआ और बचत क्या हुई, बैलेंस क्या बना। मैं समझती हूं आप में से ऐसा कोई व्यापारी नहीं होगा जिसका बैंक बैलेंस ना हो, है कोई ऐसे? हर एक का कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस जरूर होता है। और ऐसे भी कोई आप में से नहीं होंगे जो सदा अपनी बचत में से विड्रोवल ही करते रहे, पैसे निकालते ही रहे। नहीं, आप ये भी लक्ष्य रखते हैं कि उसमें जमा भी जरूर हो, जमा भी करते रहे, सिर्फ निकालते नहीं रहे। तो जैसे धन साधन के खजानों में आपका इस बात पर अटेंशन रहता है, इसी प्रकार और कौन से खजाने हैं जहां हमें बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। इसी लक्ष्य को लेकर के, इसी थीम को लेकर के ये विशेष कार्यक्रम बना हुआ है। व्यापार और उद्योग क्षेत्र देश की समृद्धि का आधार है, और जो देश जितना आर्थिक रूप से समृद्ध होता है वो उतना ही विज्ञान, कृषि, संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी प्रगति कर सकता है। इसलिए व्यापार और उद्योग के क्षेत्र को देश की समृद्धि का आधार, एक बैकबोन माना जाता है। एक रीढ़ की हड्डी के समान आधार रूप ये वर्ग हैं। यही वर्ग हैं जो हमें दैनिक जीवन के लिए आवश्यक चीजों की उपलब्धि कराता है। प्रकृति ने देखिए हमें 5 तत्व दिए हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। प्रकृति ने हमें ये सिर्फ 5 तत्व दिए हैं, लेकिन इन 5 तत्वों से कितनी चीजें बनाकर हमें उद्योग ने दी है। एक छोटी पीन, स्क्रू, एक छोटी सुई से लेकर बड़े से बड़ी मशीन्स उद्योग के कारण हमें प्राप्त हुई है। इसलिए सुख सुविधा के साधन प्रदान करने वाला ये वर्ग है। और आप सभी व्यापारी भाई बहने हैं जिसके कारण ही घर बैठे ये दैनिक उपयोग की या कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की जो सुविधा साधन है वो घर बैठे उपलब्ध होते हैं। आज इस छोटे से आबू रोड में बैठे हुए अगर हमें शिमला के एप्पल चाहिए या आसाम की चाय चाहिए या तमिलनाडु साउथ से हमें कॉफी चाहिए या देश विदेश की कोई भी चीज चाहिए, वो हमें व्यापारियों के कारण ही उपलब्ध होती है। हम कह सकते हैं कि ये सबको मिलाने वाला, जोड़ने वाला वर्ग है। सुबह सुबह आप एक चाय का कप लेते हैं, लेकिन वो आपको कब प्राप्त होता है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, और वो सारी चीजें हमें देने वाला यही वर्ग है। राजनीति तो देश की एक सीमा में रहकर के कार्य करती है, लेकिन व्यापार और उद्योग का क्षेत्र देश की सीमाओं को भी पार करके सारे विश्व में फैला हुआ है। ये वर्ग जहां आर्थिक रूप से हमें सद्धरता प्रदान करता है, क्योंकि आय का एक बहुत बड़ा साधन ये वर्ग हमें उपलब्ध कराता है, वहां ये हजारों करोड़ों लोगों को रोजगारी का साधन भी उपलब्ध कराता है। इसलिए ये अपने आप में बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण वर्ग है। आप सबके अंदर जो विशेषताएं हैं आप स्वयं जानते ही होंगे। एक जिम्मेवारी की सेंस, गवर्नमेंट नौकरी करना फिर भी सहज है, लेकिन एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना बिजनेस करना होता है। इसलिए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, परिस्थिति को परख लेना, पहले से भांप लेना, व्यक्ति और वस्तु को परख लेना, उस अनुसार डिसीजन कर लेना, ये आप में विशेषताएं हैं। व्यवहार कुशलता भी और मिलनसार नेचर भी आप लोगों के अंदर होता है। अक्सर देखा है कि व्यापारी वर्ग धार्मिक भी होता है, दानी भी होता है। जहां भी बड़े बड़े सामाजिक कार्य होते हैं, दान करने में यही वर्ग सदा आगे रहता है। बड़े बड़े कार्यालय, धर्मशालाएं, कम्युनिटी हॉल्स, मंदिर वगैरह बनते हैं, उसके दाताओं की लिस्ट जब पढ़ते हैं तो बहुत करके उसमें व्यापारी भाई बहने ही आगे होते हैं। तो ऐसी विशेष समाज की क्वालिटी आत्माएं आप सभी यहां पधारे हैं। लेकिन जब से व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में लिबरलाइजेशन हुआ है, उदारीकरण की नीति जब से आई है, प्राइवेटाइजेशन जब से हुआ है और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण जब से हुआ है, तब से व्यापार और उद्योग के क्षेत्र के सामने अनेक चुनौतियां आई हुई हैं और उसके कारण ये वर्ग कुछ तनाव में भी दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम इस बात पर देखेंगे कि आज के व्यापार और उद्योग करने वाले भाई बहनों के सामने कौन सी प्राथमिकताएं रहती है। सबसे पहला है बिजनेस करते ही है प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट करना, लाभ प्राप्त करना, ये पहली प्राथमिकता हर व्यापारी की रहती है। दूसरा है एक्सपांशन, अपने व्यापार को बढ़ाते जाना, उसका विस्तार करते जाना, एक दुकान है दो दुकान करना, दो दुकान है तो और दो शहरों में दुकान करना, अपने व्यापार को बढ़ाते जाना, ये उसके मन में सदा रहता है। तीसरा है कि हाई एंड परफेक्ट टेक्नोलॉजी को अपनाना, क्योंकि जब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है तब से हर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाकर, बहुत ही रिफाइंड सिस्टम्स और साधन को अपनाकर अपनी इंडस्ट्री और अपने बिजनेस को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण प्रतिवर्ष हजारों इंडस्ट्री बंद होती जाती है जो पुराने सिस्टम और साधनों से चलने वाली इंडस्ट्री है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है क्योंकि लेटेस्ट साधन और सिस्टम्स निकले हैं। चौथा है कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन के एज से आप सभी पास हो रहे हैं और इतना कंपटीशन का ये युग है कि अगर आप अपनी प्रोडक्शन में, अपने बिजनेस की आर्ट में, अपनी टैक्ट में कुछ नवीनता या विशेष नहीं करते हैं तो अपने मार्केट को वो लूज कर देते हैं, उसको मार्केट में स्टैंड रहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उससे और अच्छी और नवी, नई क्रिएटिविटी वाली, नोवेल्टी वाली चीजें बाजार में आती है। इसलिए व्यापारी कॉन्स्टेंट उस कंपटीशन के एज से पास हो रहे हैं। हाई टर्नओवर, अधिक उत्पादन करना, 1 लाख का बिजनेस है तो 10 लाख का करना, 10 लाख का है तो 20 लाख का करना, अधिक उत्पादन, ये उसके सामने प्राथमिकता रहती है और उसका बिजनेस, उसका इंडस्ट्री इंटरनेशनल लेवल पर काम करें, ऐसा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य ट्रेड बनाना, ये उसका एम रहता है। और ओनरशिप, खुद मालिक उसका रहे और वो मालिक बन करके वो बिजनेस करें, ऐसा उनके सामने लक्ष्य रहता है। तो ये कुछ बातें हैं व्यापार एवं उद्योग की वर्तमान जो प्राथमिकताएं हैं हर व्यापारी और उद्योगपति के सामने, वो यही हैं। तो लेकिन इन प्राथमिकताओं को पूर्ण करने के लिए नेचुरली हरेक को बहुत ही अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। तो यहाँ कुछ बातें बताई हैं जो उनके सामने एक चुनौती के रूप में है और उसी का रिजल्ट कांस्टेंट एक तनाव की महसूसता हरेक भाई बहने करते हैं। उसमें बताया है एक तो सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती रहती है, और उसके कारण भी उनको टेंशन रहता है। एक गवर्नमेंट एक प्रकार की नीति को अख्तियार करती है, वहां दूसरी गवर्नमेंट आकर उसको चेंज करती है, तो ये पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, इसके कारण भी उसे टेंशन रहता है। दूसरा है टैक्स रेट में वृद्धि होती है, जितनी मेहनत करते हैं जितना प्रॉफिट होता है उससे अधिक या उसमें से काफी हिस्सा उनको टैक्स में देना पड़ता है, तो टैक्स रेट्स बदलते रहते हैं, वो भी उनके लिए तनाव का कारण बनता है। अचानक परिवर्तन को पार करने की शक्ति की कमी, अचानक चेंजेस उसके सामने आते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण भी आते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण भी आते हैं, अपने कर्मचारियों के तरफ से व्यक्ति या प्रकृति, गवर्नमेंट किसी के तरफ से भी अचानक चेंज आते हैं, और उस चेंज को पार करने की क्षमता न होने के कारण वो उस चेंज को उस परिवर्तन को फेस नहीं कर पाते हैं और टेंशन का शिकार हो जाते हैं। मुख्य समस्याओं की पहचान की कमी, सुपरफिशियल लेवल पर जो प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दे रहे हैं हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, लेकिन रूट कॉज क्या है, वास्तव में मुख्य समस्याएं कहां पर है, जहां से ये बातें आ रही है वो मेन और जो मूल बात है कॉज है उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए वो रूट से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण सदा काल के लिए समस्याओं का निवारण नहीं कर पाते हैं। व्यक्तिगत उसकी अपनी समस्याएं, अपने नॉलेज की लिमिटेशन होती है या कोई साइकोलॉजिकल लिमिट्स होती है या उसका अपना फिजिकली कोई प्रॉब्लम होता है, पर्सनल रिलेशन की कोई प्रॉब्लम होती है, उनके अपने व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं शारीरिक और मानसिक, उसके कारण भी इतने बड़े कारोबार को पहुंच नहीं पाते हैं और सतत तनाव महसूस करते हैं। संसाधनों की कमी, अच्छा व्यापार अच्छा उद्योग स्थापित करने के लिए रिसोर्सेस चाहिए, चाहे वो रिसोर्सेस पीपल के रूप में है, मानव के रूप में है, संपत्ति के रूप में है या चीजों के रूप में है। कभी धन साधन की कमी हो जाती है, कभी कच्चे माल की कमी हो जाती है, और सब कुछ है तो अच्छे लोगों की कमी हो जाती है। संसाधनों की कमी होने के कारण भी कभी कभी उद्योग बंद हो जाता है और वो सक्सेस को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स और कर्मचारी असंतोष, जो कर्मचारी उनके पास काम कर रहे हैं वो कर्मचारी इतने एबल नहीं होते हैं। हमारे पास यहाँ काफी इंडस्ट्री के ग्रुप्स आते हैं स्पेशल यहाँ के स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करने के लिए और विद्यालय के मैनेजमेंट सिस्टम को स्टडी करने के लिए, तो हर एक इंडस्ट्री हमें कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स बताती है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप्स आते हैं, वे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स बताते हैं। एक तो बात ये लोग ये करते हैं कि हमारे पास जो कर्मचारी हैं, कारीगर हैं, लेबर्स हैं, जो भी कहते हैं स्किल्ड लेबर्स हैं या जो हमारे साथी हैं कार्यकर्ताएं, एक बात ये है कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस से काम नहीं करते हैं। लोग आते हैं काम करते हैं, उनको पेमेंट से मतलब होता है, वो दिल से काम नहीं करते हैं, जिम्मेवारी से काम नहीं करते हैं। जैपनीज लोगों के लिए कहा जाता है कि वे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में सिर्फ काम नहीं करते हैं, दे आर मैरिड विथ दैट ऑर्गेनाइजेशन, वे अपने जीवन को उससे जोड़ देते हैं और उतनी जवाबदारी के साथ काम करते हैं। तो एक तो लोगों में जिम्मेवारी के सेंस की कमी लगती है, दूसरा है कि कमिटमेंट नहीं, जो प्रतिबद्धता चाहिए कार्य की वो प्रतिबद्धता नहीं, कहते हैं सुनते हैं समझते हैं पर करते क्या है, कमिटमेंट नहीं है। और मोटिवेशन, दिल के उमंग उत्साह से अपना समझ करके काम जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। चौथी बात, कर्मचारियों के संबंध में एक ये प्रॉब्लम होता है कि इंडिविजुअली वे बहुत अच्छे हैं, विशेष हैं, एबल भी हैं, लेकिन जब एक टीम में वर्क करना है तो वे इतना नहीं काम कर पाते। एक कंपनी ने तो हमें अपना सर्वे बताया और उस सर्वे का रिजल्ट हमें बताया कि एक भारतीय के अंदर 3 जैपनीज जितनी काम करने की क्षमता होती। भारत के लोग इतने सक्षम हैं क्योंकि उनके अंदर जो समझ, सूझ, एक कॉमन सेंस जो है वो और देश के लोगों में नहीं है। तो एक भारतीय के अंदर 3 जैपनीज जितनी काम करने की क्षमता है, लेकिन उन्होंने बताया कि जब 2 भारतीय मिलते हैं तो केवल 1 जैपनीज जितना ही वो काम कर पाते, और जब 3 भारतीय मिलते हैं तो काम ही नहीं होता है क्योंकि आपस में टीम स्पिरिट नहीं है, मिलके काम नहीं कर पाते हैं। दूसरा, एलपीजी शुरू हो जाता है लेग पुलिंग गेम, 1-2 के पांव खींचना और गिराना, ये काम शुरू हो जाता है। जो आपस में कॉपरेशन की भावना से चलना चाहिए वो नहीं, क्योंकि लेक ऑफ पॉजिटिव विजन, 1-2 की अच्छाई नहीं देखते हैं, इसलिए मिल के काम नहीं कर पाते हैं। फोरसाइटेडनेस नहीं, दूरदर्शिता की कमी है, अल्पकाल के लाभों के पीछे आकर्षित हो जाते हैं लेकिन उसके दूरगामी परिणामों को नहीं सोचते हैं। इस प्रकार की बातें हैं कर्मचारी असंतोष, क्योंकि आफ्टर ऑल आप कितना भी साधन रिफाइन ले आएंगे, सिस्टम रिफाइन ले आएंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करेंगे, लेकिन हर सिस्टम के पीछे, हर मशीन के पीछे तो मानव ही है ना, और वो मानव अगर अपडेट नहीं है, रिफाइन नहीं है, वो हर रीति से तैयार नहीं है, तो कितने भी लेटेस्ट साधन हो तो भी सक्सेस नहीं मिलता है। इस विश्वविद्यालय का उद्योग के क्षेत्र में, बिजनेस के लिए सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करना जो हुआ वो एक निमित्त कारण से हुआ। कल आपको नागार्जुना फर्टिलाइजर्स के स्टेलिन भाई मिल रहे थे, उस नागार्जुना फर्टिलाइजर्स के जो चेयरमैन थे मिस्टर केवी के राजू, अभी नहीं है वो हमारे एक प्रोग्राम में आए थे। एक बिजनेस विंग का ही बहुत बड़ा सम्मेलन था और उसमें वो आए थे, हजारों भाई बहने आए थे और कोई कारण से अचानक लाइट उस समय चली गई, लेकिन फिर भी इतना बड़ा ऑडियंस, लाइट नहीं लेकिन फिर भी शांति से और अनुशासन से कार्यक्रम चलता रहा, कोई अव्यवस्था नहीं हुई, कोई आवाज सिटी मारना, कोई कुछ बात नहीं बनी। उनको ये चीज बहुत प्रभावित कर गई, उन्होंने चाहा कि मैं हेडक्वार्टर को विजिट करना चाहता हूं, और वो यहां हेडक्वार्टर में आए और यहां आकर उन्होंने पूरे हेडक्वार्टर के हर एक डिपार्टमेंट को देखा और उन्होंने देखा कि इतने डिपार्टमेंट चल रहे हैं और चलाने वाले जो भाई बहने हैं ऐसा भी नहीं है कोई प्रोफेशनल है, कोई इतने पढ़े लिखे हैं, कोई पेमेंट भी नहीं ले रहे हैं और फिर भी इतना अच्छा कारोबार चल रहा है। तो वो दादी जी से मिले और दादी जी से पूछा कि आपके इस सफल व्यवस्था का राज क्या है। दादी जी ने एक ही शब्द में कहा कि स्पिरिचुअल पावर इज द सीक्रेट ऑफ अवर सक्सेस। इसके पीछे जो आध्यात्मिक शक्ति कार्य कर रही है वो हमारी सफलता का राज है। और उन्होंने अपनी बात बताई कि मैं अपनी इंडस्ट्री में वेल एजुकेटेड लोगों को नॉमिनेट करता हूं, वेल ट्रेनिंग देता हूं और उसको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देकर हर रीति से मैं उसको वेल ट्रेन कर देता हूं, लेकिन फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिलता है क्योंकि जिम्मेवारी की सेंस नहीं है, लोग काम ही नहीं करना चाहते। पढ़े लिखे हैं, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन देकर उसको वेल ट्रेन किया जाता है लेकिन काम करने का उमंग ही नहीं है, काम करने की जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते हैं। तो ये जो सारे गुण हैं, जिम्मेवारी, मोटिवेशन, प्रतिबद्धता, कॉपरेशन की भावना, पॉजिटिव विजन, ये सब गुणों का विकास जो है वो कैसे हो सकता है? वो कोई बाजार से नहीं खरीद सकते हैं, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से वो स्किल्स डेवलप नहीं हो सकते हैं, वो तो हर इंसान को अपने भीतर से ही विकसित करना होगा। तो उन्होंने विद्यालय को इनवाइट किया कि आप भारत की स्पिरिचुअलिटी को लेकर के ऐसा कोई मैनेजमेंट का कोर्स बनाएं और हमारे नागार्जुना फर्टिलाइजर्स में उसको अप्लाई करें। विद्यालय ने अपने देश विदेश के भाई बहनों के अनुभवों को लेकर वेस्टर्न मैनेजमेंट साइंस एंड इंडियन स्पिरिचुअलिटी को ब्लेंड करके व्यापार और उद्योग के लिए इन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया और उसमें से व्यापारियों के लिए जो ये सेल्फ ओरिएंटेशन वर्कशॉप कार्यक्रम है उसमें आप सभी पधारे हैं। मैं एक ऑल्विन टॉफलर नाम सुना होगा जिसकी थर्ड वेव नाम की एक किताब है, आपने पढ़ी होगी कईयों ने, उसमें से मैंने कुछ क्वोटेशन लिया है कि औद्योगिक क्रांति के बाद जहां हमें धन साधन की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं वहां समाज की क्या स्थिति बनी है जो आज हम स्वयं उनके शिकार हैं, वो परिणाम हम हमारे सामने देख रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति ने एक स्तर पर एक अत्यंत सुग्रथित समाज व्यवस्था निर्माण की तो दूसरे स्तर पर उसने समाज की अंतर्गत एकता को तोड़ डाला, जहां एक पूरा व्यक्ति पहले खेती से धरती से जुड़ा था, औद्योगिक क्रांति के बाद व्यक्ति घर से बाहर बाजार में आया और पूरा व्यक्ति नहीं उसके एक एक अंग, कहां उसका हाथ चाहिए, कहां उसका पांव चाहिए, कहां केवल दिमाग चाहिए, इसलिए उसके अंतर्गत एकता को तोड़ डाला। उसके कारण एक ऐसी जीवन पद्धति विकसित हुई जिसमें आर्थिक खींचातानी, सामाजिक संघर्ष और मानसिक रोगिष्ट दशा हमेशा की हो गई। और ये तीनों चीजें हम अपनी स्थिति में आज देख रहे हैं कि आर्थिक खींचातानी कितना भी है पर वो कम है, और भी चाहिए। ये रोग आज हर इंसान को लागू हुआ है। सामाजिक संघर्ष, गरीब और शाहूकार के भेद और मानसिक रोगिष्ट दशा कायम हो गई। इतिहास में सबसे ज्यादा हिसाबी लोभी व्यापारी मानस वाली और पैसे के पीछे पागल ऐसी संस्कृति खड़ी हुई। हमारे देश की संस्कृति जो पहले आध्यात्मिकता को लेकर के थी, जिसमें मूल्य चरित्र मानव व्यवहार को महत्व दिया जाता था, आज एक ऐसी भौतिकवादी और भोगवादी सभ्यता विकसित हो गई है। मानव मानव के बीच नग्न स्वार्थ के सिवाय, निर्मम नकद भुगतान के सिवाय और कोई संबंध नहीं रहा है, है ना? हिसाबी मानसिक व्यापार करते करते व्यक्ति स्वभाव से भी व्यापारी हिसाबी बन जाता है। इसलिए हर रिश्ते की वैल्यू हिसाब के आधार से करता है। इसलिए निर्मम स्वार्थ और नकद भुगतान के हिसाब से ये स्वार्थ संबंध बन गए। व्यक्तिगत संबंध, कौटुंबिक नाता, प्रेम, मैत्री, पड़ोसी और सामुदायिक संबंध, सब कुछ ही व्यापारी स्वार्थ के कारण खंडित और भ्रष्ट हुए हैं। आज सभी में एक संग्रहखोर वृत्ति, व्यापारी भ्रष्टाचार और मानव संबंधों का केवल आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करने की वृत्ति देखने में आती है। ये रिजल्ट हम सब देख रहे हैं, मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं और कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज सुबह भी मैंने कहा था कि हमारे रिलेशन ह्यूमन बीइंग मानव आत्मा से नहीं, लेकिन ह्यूमन डूइंग, कौन क्या कर रहा है, किस पद प्रतिष्ठा पर है, उस पर आधारित है। ऑलविन टॉफलर ने यह भी कहा है कि आज की औद्योगिक सभ्यता में श्रम, विचार, कला और आत्माओं का बिक्री, क्रय और व्यापार विनिमय होता है, है ना? व्यक्ति को खरीद लिया जाता है, उसकी बौद्धिकता को खरीद लिया जाता है, उसकी कला को खरीद लिया जाता है, उसकी लेबर को खरीद लिया जाता है। उसके कारण मानव का एक विच्छिन्न व्यक्तित्व बन गया, एक नीच गंवार अभद्र भौतिकवाद आज समाज में फैल गया है। पश्चिम के इस लेखक ने ये अपने विचार लिखे हैं और हमारे देश के आप जानते होंगे बॉम्बे के कांति भट्ट जो लेखक है प्रसिद्ध, उसने उसका अनुवाद भी किया हुआ है। इकोलॉजी, संस्कृति, धर्म, कौटुंबिक रचना, मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ कर पैदा किया हुआ आर्थिक विकास वास्तव में विकास नहीं कहा जा सकता है। विकास बेशक हमने किया है, लेकिन इकोलॉजिकल बैलेंस, पर्यावरण का जो असंतुलन पैदा हुआ है, हर आए दिन हम इन बातों को सुनते हैं और उसी का रिजल्ट हम जो प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो रहे हैं वो हम देखते हैं। संस्कृति हमारी भ्रष्ट हो गई, धर्म, कौटुंबिक रचना, मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ करके जो हमने ये इकोनॉमिकली डेवलपमेंट किया है, वास्तव में वो विकास नहीं कह सकते हैं। इसलिए उसने लिखा है कि आवश्यकताओं को अमर्याद बढ़ाते जाने में समझदारी नहीं है। हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है, कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। लेकिन आवश्यकताओं को हम अमर्याद रूप से बढ़ाते जा रहे हैं, वो समझदारी का काम नहीं है। यंत्र मानव के सिर पर चढ़ बैठे, टेक्नोलॉजी हमारे पर सवार हो जाए, ये इष्ट नहीं है। प्रकृति की लूट भी बिल्कुल पागलपन है। प्रकृति की गोद में सादगी पूर्ण श्रम युक्त जीवन जीना ही इच्छनीय है। इसलिए यथार्थ विकास के लिए तो मुक्त और पूर्ण विकसित मानव की आवश्यकता है, जिसके तरफ हम बिल्कुल बेध्यान हो चुके हैं। हम स्वयं को भूल गए हैं। हम साधनों के विकास, टेक्नोलॉजी के विकास, धन के विकास में लगे हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि हम बिजनेस ओरिएंटेड हो गए हैं, मनी ओरिएंटेड हो गए हैं, मटेरियल ओरिएंटेड हो गए हैं, लेकिन अब आवश्यक है सेल्फ ओरिएंटेड होना, तभी हम एक मुक्त और पूर्ण विकसित मानव बन सकेंगे। और इसलिए ही स्व अभिमुख कार्यशाला, यह कार्यक्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो स्वयं की सभी व्यक्तिगत सीमाओं को तोड़कर स्वयं के मालिक बनना चाहते हैं। ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो अपनी लिमिटेशंस को ब्रेक करना चाहते हैं। हम सभी कोई ना कोई लिमिटेशंस में है, सीमा में है। मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मेरा नेचर ऐसा है, मेरा बोलने का स्टाइल ऐसा है, मैं ऐसा कह देता हूं, ये क्या है, हमारी लिमिटेशंस है। मैं आपसे तीन बात पूछना चाहती हूं कि आपका प्रतिदिन तीन प्रकार के लोगों से मिलना जुलना होता है। एक है आपके अपने कर्मचारी, आपके दुकान में, ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में जो भी कार्यकर्ताएं हैं, कारीगर हैं, कर्मचारी हैं, उनसे आपका रोज मिलना होता है। दूसरा है आपके ग्राहक, कस्टमर्स, जिससे आपका रोज मिलना होता है, भात भात के ग्राहक आपके पास आते हैं। और तीसरा है आपके डीलर्स, जिससे आपका लेना देना होता है। अब मैं आपसे पूछती हूं कि आप अपने ग्राहकों के लिए अच्छे से अच्छा क्या करना चाहते, क्या करना चाहते, संतोष देना चाहते और अच्छी क्वालिटी देना चाहते, और आवाज से बोले, थोड़ा खड़े होके बोले, रिजनेबल प्राइस में देना चाहते, टाइमली देना चाहते, संतोष देना चाहते। बहुत अच्छा। आप अपने कर्मचारियों के लिए क्या अच्छा करना चाहते, जो आपके साथ काम करते हैं, प्यार से चलाना चाहते और उनको बेटर वर्किंग कंडीशन देना चाहते, अच्छे रिलेशन भी हो, उसे एक परिवार का सभ्य समझकर व्यवहार करना चाहते और फैसिलिटीज देना चाहते। आप अपने डीलर्स के लिए अच्छा क्या करना चाहते, टाइम से देना चाहते, विश्वास दिलाना चाहते। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। आप अपने ग्राहकों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने डीलर्स के लिए बहुत अच्छा अच्छा करना चाहते हैं। बहनें भी सोचती होंगी कि हम, आप अपने परिवार के सभ्यों के लिए क्या अच्छा अच्छा करना चाहते, अपने परिवार के लिए क्या अच्छा अच्छा करना चाहते, आप कर ही रहे हैं, बोलिए, प्यार से, प्यार से रखना चाहते हैं, प्यार से व्यवहार करना चाहते। अब मेरा प्रश्न है आप सबसे कि आप अपने ग्राहकों के लिए, साथियों के लिए, डीलर्स के लिए, परिवार के लिए बहुत अच्छा अच्छा करना चाहते हैं, अनेक विचार आपके पास है, क्या ये सब कुछ आप कर पाते हैं?
नहीं,
बस सिर्फ बातें हैं। कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, माना हम सब कुछ नहीं कर पाते। इसको कहते हैं लिमिट्स, क्यों नहीं कर पाते। इसको कहते हैं लिमिट्स कि हम करना चाहते हैं पर हम नहीं कर पाते। कहीं हमारा स्वभाव ऐसा है, कहीं हमारी आदतें ऐसी है कि हम रिएक्ट कर बैठते हैं, शांति नहीं रख पाते हैं, प्यार से नहीं चला पाते हैं, शुभ भावना हमारी नहीं रहती है। ये है हमारी आंतरिक लिमिट्स, है ना? ये है हमारी आंतरिक लिमिट्स जिसके कारण हम बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं, सफल नहीं होते हैं। इसको कहते हैं आंतरिक सीमाएं। उनको कैसे हम तोड़े और हम सफल व्यापारी बने, सक्सेस को प्राप्त करें, ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए है कि जो अपनी लिमिट्स को ब्रेक करके आज जो हम एक व्यापार के गुलाम बन गए हैं, हम अपने ट्रेड के, अपने व्यापार के मालिक बनना चाहते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमने क्या क्या निश्चित किया है, किस उद्देश्य से ये कार्यक्रम बनाया गया है। सबसे पहली बात, सर्वोपरि स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए स्वयं का अनुशासन एवं निरंतर विकास करना। सर्वोपरि स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए स्वयं का अनुशासन और निरंतर विकास करना। परिस्थितियां बाह्य है, भी गवर्नमेंट ऐसे कर रही है, ग्राहक ही इस प्रकार के आते हैं, माल ही ऐसा आया हुआ है, टोटल बाजार में सिस्टम ही ये चल रहा है, कारण सारी परिस्थितियां बाह्य है। लेकिन इन बाह्य परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए स्वयं का अनुशासन और आंतरिक विकास करते रहना। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने सही ये कहा है कि बाह्य समाज को अगर हम व्यवस्थित करना चाहते हैं तो हमें हरेक की आंतरिक दिव्य चेतना को जागृत करना होगा। हमें एक एक पत्ते को पानी पिलाकर पेड़ को हरा भरा रखने की बात नहीं करनी है, इससे पेड़ हरा भरा नहीं रहेगा। एक एक पत्ते को पानी पिलाने की जरूरत नहीं है, हमें जड़ों को सींचने की आवश्यकता है, हमें रूट को क्योर करने की आवश्यकता है। अगर हम स्वयं अपने आंतरिक स्वरूप को श्रेष्ठ बना दें, शुद्ध बना दें, अपने में अच्छे गुण शक्तियों का विकास कर दें, तो बाह्य परिस्थिति कैसी भी हो, कैसा भी कोई सिचुएशन हो, व्यवहार करता हो, हम अच्छे से अच्छा दे सकते हैं। इसलिए इसका एक उद्देश्य ये है, और ये मूल सत्य है, आप खुद भी याद करके रखेंगे कि हमारे सामने जो परिस्थितियां आती हैं, वो हमारी अंतर स्थिति का ही प्रतिबिंब है, ये हमारी आंतरिक स्थिति का ही एक प्रतिबिंब है। हम अंदर से विकृत होते जा रहे हैं, इसलिए बाह्य व्यवस्था भी विकृत हो रही है। इसलिए खुद को डिसिप्लिन करने की, खुद को डेवलप करने की, खुद को एनरिच करने की आवश्यकता है और ये इस कार्यक्रम का एक लक्ष्य है। दूसरा, जीवन में संपूर्ण संतुलन लाना, परफेक्ट बैलेंस इन इनर वर्ल्ड। बाह्य जीवन में तो आप बैलेंस रखते हैं, उसका अटेंशन रखते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करके भी ज्यादा कमाकर उस खर्च को आप पहुंच जाते हैं और अपना बैलेंस बना लेते हैं। लेकिन हमारे आंतरिक जगत के अंदर जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, आपका आगे सेशन आएगा कि हमारा आंतरिक जगत क्या है, उसमें कौन से खजाने हैं, वहां इम्बैलेंस क्या है। तो हमें लाइफ में परफेक्ट बैलेंस लाने की जरूरत है तो हम ब्लिसफुल लाइफ जी सकेंगे। जैसे बैंक बैलेंस है तो कितना भी बड़ा खर्च आ जाए, प्रसंग आ जाए, आप चिंतित नहीं होते, आप अंदर से निश्चिंत है कि मेरे पास है, बैलेंस है, जमा का खाता पूरा भरा हुआ है। इस प्रकार आप अपनी इनर पर्सनालिटी में जब बैलेंस लाएंगे तो अपनी लाइफ ब्लिसफुल, आनंद से भरपूर जी सकेंगे। तीसरा है अंतरावलोकन के कौशल का विकास करना। सरल शब्दों में कहूं कि अपने आपका निरीक्षण करने की कला का विकास करना, स्वयं को देखने की कला का विकास करना, अपने अंतर का अवलोकन करना। हमारा फोकस शिफ्ट हो गया है, हमारा अटेंशन सदा अन्य के तरफ है, बाह्य के तरफ है। आवश्यक है उस फोकस को अंदर शिफ्ट करना। एक स्थूल एग्जाम्पल में देना चाहूंगी कि मान लो अचानक घर में आग लगती है तो सबसे पहले आप किसको बचाना चाहेंगे, किसको सेफ करना चाहेंगे सबसे पहले? हाँ, पर उसको भी सेव करने के लिए सबसे पहले खुद को, है ना? आप खुद सेफ रहेंगे तो परिवार को सेव करेंगे, पैसों को सेव करेंगे या जो भी सेव करना चाहते हैं। इसलिए खुद सेफ रहते हुए, मैक्सिमम अपनी सेफ्टी रखते रखते आप बाकी सब कुछ सेव करते हैं ना। तो आज के इस विश्व के अंदर भी आवश्यक है कि पहले स्वयं को ठीक करें, स्वयं को सेफ करें और उसके लिए अपना आंतरिक निरीक्षण करें। अक्सर हम कोई भी बात होती है तो कौन कारण है, किसके कारण हुआ, उस व्यक्ति और परिस्थिति को ढूंढते हैं और उसको दोषित करते हैं कि इसके कारण प्रॉब्लम आया है, इसके कारण हमेशा मुसीबत आती है। हम परिस्थितियों को, व्यक्तियों को दोषित करते हैं, परंतु कई बार समस्या का कारण हम स्वयं होते हैं, हम स्वयं होते हैं। हमारा अपना स्वभाव संस्कार ऐसा होता है, हमारी आदतें ऐसी होती हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। लेकिन हम सेल्फ ओरिएंटेड है नहीं, खुद का निरीक्षण, जिसको हम यहां स्वदर्शन कहते हैं, वो स्वदर्शन हम करते नहीं हैं, इसलिए हमें अपना दोष दिखाई नहीं देता है। आपकी तरह ही एक बहुत ही बौद्धिक व्यक्ति कार्यक्रम में आया था और उसकी यही हम लोग कंप्लेन हमें की कि बहन जी मेरे पास इतने अच्छे अच्छे विचार है, आइडियाज है, पर हमें आप कोई सुनते ही नहीं है। तो हम लोगों ने उन्हें कहा कि ठीक है, आप हमें भी नहीं सुनिए, आप ये सेशन अटेंड नहीं करिए, आप शांति से कैंपस में वॉक करके आइए। वो 2 घंटा चले गए बाहर और शांति से वॉक करके आए। जब वो आए सेकंड सेशन में, बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे थे। हमने उनसे पूछा क्या बात है, आप बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। उसने कहा बहन जी मुझे कारण मिल गया। उसने बताया कि अब मुझे समझ में आया कि लोग मुझे क्यों नहीं सुनते हैं, क्योंकि मैं ही किसी की नहीं सुनता, मैं ही किसी की नहीं सुनता। मुझे अपने विचार का इतना ईगो है कि मैं किसी की सुनता ही नहीं हूं तो मुझे कौन सुनेगा, है ना? जब वो साइलेंटली बाहर अपने आप में के साथ जब गए बीच, प्रकृति के बीच, तो उससे वो सेल्फ रियलाइजेशन हुई। तो ये जरूरी है, जैसे गाय भैंस को आप देखते हैं कि वो भी घास खाकर क्या करती है, शांति से एकांत में बैठकर जुगाली करती है। हमें भी रोज की दिनचर्या में कुछ क्षण निकालकर मनन करने की आवश्यकता है, स्वदर्शन करने की आवश्यकता है, अपने आप का निरीक्षण करने की आवश्यकता है, तो हमें कई बातों के जवाब हमारे अपने अंदर से ही हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये है कि वो आर्ट आप विकसित करें स्वदर्शन की, स्वयं के निरीक्षण की। तीसरा है सकारात्मक, मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव विचार, वाणी और कर्म की वृद्धि करना। जैसा आज सुबह हम सभी ने देखा कि नकारात्मक चिंतन चलता ही रहता है, उसके लिए हमें कोई आर्ट नहीं सीखनी पड़ रही। चारों ओर की नेगेटिविटी को देखकर, जब देखते हैं लोग कि चारों ओर पापाचार, भ्रष्टाचार, रिश्वत, लांच, संग्रहखोरी, काला बाजार, ये सब चल रहा है, तो इंसान खुद भी क्या सोच लेता है, क्या सोच लेता है, हाँ, कि जब सभी करते हैं तो हम भी करें, हाँ, ऐसे ही सोच लेते हैं। चारों ओर की नेगेटिविटी को जब देखते हैं तो व्यक्ति खुद भी नेगेटिव सोच लेते हैं। कोई भी बात बनती है हमें पहले नेगेटिव विचार आता है। बच्चा रोज टाइम से घर में आ जाता है स्कूल से, आज 5 बज गए, 5:30 बज गए, 6 बज गए, अभी तक बेटा नहीं आया, क्या विचार चलते, नेगेटिव, कहीं ये तो नहीं हुआ, कहीं वो तो नहीं हुआ, है ना? तो आवश्यक है पॉजिटिव विचार, वाणी और कर्म की वृद्धि करना। अच्छा बहुत सोचते हैं, अच्छा बोलते भी हैं, वो आर्ट भी बिजनेसमैन में तो है, हाँ, अच्छा भी करें, है ना? क्योंकि हम सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। आप रोज की दिनचर्या में कितनी बार ये शब्द बोलते होंगे कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मेरे से हो गया, मुझे यहां नहीं बोलना चाहिए था, चुप रहना चाहिए था, लेकिन मेरे मुख से निकल गया है, बस अब मुझे इस बात को नहीं सोचना है, हो गया सो हो गया, पास्ट इज पास्ट। लेकिन फिर भी विचार करते ही रहते हैं। तो लाइफ की सिचुएशन क्या बन गई है? जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। हमें शांति से चलना है, प्यार से चलना है, सुख देना है, हम नहीं कर पाते। जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो बार बार करते रहते हैं। मीन्स हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं है, हमारा जीवन दूसरों के हाथ में चला गया है। परिस्थिति ऐसी है इसलिए हम ऐसा करते हैं, लोग ऐसे हैं इसलिए ऐसा करना पड़ता है, समय ऐसा है इसलिए ऐसा करना पड़ता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम परिस्थितियों के शिकार बन गए हैं, समय हम पर हावी हो गया है, हमारा अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला गया है। घर में टीवी लाते हैं तो रिमोट कंट्रोल पड़ोसी को दे देते हो क्या? हाँ? कि भाई तुम जो दिखाना चाहो वो दिखाओ? हाँ? नहीं, बल्कि घर का हर सभ्य क्या चाहता है? रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो, ताकि मैं जो देखना चाहूं वो मैं देख सकूं। और जीवन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? दूसरों के हाथ में। देखो ना कैसे बोल के गए, बोलने वाला चला गया, बहन जी सारा दिन दुखी होती रहती, किसने अपमान कर दिया, कड़वे शब्द बोल दिए, हम डिप्रेस हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। हमारा कंट्रोल, हमारा लाइफ हमारे हाथ में नहीं। यहां स्पिरिचुअल पावर चाहिए, यहां मेडिटेशन यूजफुल है। इस कार्यक्रम से हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे जीवन में पॉजिटिविटी का डेवलपमेंट हो। और चौथा लक्ष्य है कि स्पष्ट समझ, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के द्वारा अपने आंतरिक जगत को परिपूर्ण बनाना। हमारा इनर वर्ल्ड क्या है? आज सुबह भी आपने समझा है कि हमारा आंतरिक स्वरूप कौन सा है। हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा, जिसमें विचार है, इच्छा है, भावना है, स्मृति है, संस्कार है। हमें अपने आंतरिक जगत को, आत्म स्वरूप को परिपूर्ण बनाने की आवश्यकता है, और वो होगा स्पष्ट समझ, सही ज्ञान के द्वारा। सही ज्ञान के बिगर ये नहीं हो सकता। सही ज्ञान से ही हम अपनी बिलीफ्स को राइट कर सकेंगे। हर इंसान अपनी मान्यता के अनुसार व्यवहार करता है। जैसी आपकी मान्यता होगी ऐसा व्यवहार आप करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि सुख के बारे में आप क्या मानते हैं, क्या उत्तर है? एक उत्तर आएगा। हर एक का अपना अपना जवाब होगा। कोई क्या मानते हैं, कोई क्या मानते हैं। कोई कहेगा खाओ पियो मौज करो, उसी में सुख है। हा? भोगने में आनंद, कोई कहेगा त्याग करने में आनंद, बांटने में आनंद, है ना। हर एक की अपनी मान्यता है और जिसकी जैसी मान्यता होगी ऐसा ही व्यवहार वो करेगा, ऐसे ही रीति से वो जीवन जिएगा। और जीवन के कितने पहलू है एक बात नहीं है। कर्म के बारे में आप क्या मानते, कर्म फल के बारे में क्या मानते, पुरुषार्थ के बारे में, प्रारब्ध के बारे में, सुख के बारे में, दुख के बारे में, आलोक के बारे में, परलोक के बारे में, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, समाज के बारे में, संसार के बारे में आप क्या मानते हैं? अनेक पहलू हैं, जैसी मान्यता ऐसा बिहेवियर चलता है। अगर बिलीफ्स रॉन्ग है, बिहेवियर भी रॉन्ग ही चलते रहेंगे। इसलिए अगर हमें अपनी बिलीफ्स को करेक्ट करना है, अपनी मान्यताओं को, अपनी भावनाओं को, अपने संस्कारों को, अपने विचारों को अगर मुझे सही करना है, तो सही ज्ञान, रियल नॉलेज चाहिए, जो स्वयं परमात्मा हम आत्माओं को देते हैं। उस सही ज्ञान के माध्यम से हम अपने आप को भरपूर कर सकते हैं। तो ये है इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य। इसी लक्ष्य से आप सबको यहां आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में, और हम चाहेंगे कि एक एक सत्र जैसे जैसे आप अटेंड करते जाएंगे, आप इस एम को फुलफिल होता हुआ अनुभव करेंगे। ओम शांति। हमारी विधि है, हर सत्र हमें परमात्मा की याद से शुरू करना है और परमात्मा की याद से एंड करना है। 3 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे और ये 3 मिनट सिर्फ चुप नहीं बैठना है, अपना ऑब्जर्वेशन करना है। हर एक स्वयं का निरीक्षण करिए और अपनी डायरी में कोई एक कोने में आप लिखिए कौन सी लिमिट्स है जो आपको डिस्टर्ब करती है, आपके साथियों को भी डिस्टर्ब करती है, आपके परिवार के सभ्यों को भी दुख देती है, बिजनेस में भी प्रॉब्लम लाती है। वो पर्सनल लिमिट आपकी कौन सी है, आपको अपनी डायरी में एक कोने में लिखना है। दूसरों को दिखाना नहीं है, खुद के लिए है। तो 3 मिनट साइलेंस, देखिए और लिखिए। मैं सजेशंस दूंगी आपको, खुद का निरीक्षण करने में सहयोग मिलेगा। अंतर मन की गहराई में चले जाइए और सभी बातों से डिटैच हो जाइए। अपने आप का स्वदर्शन करिए। कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं, आंतरिक लिमिट्स हैं, जिसको मैं तोड़ नहीं सक रहा, जो कमजोरी, जो अवगुण मुझे स्वयं भी सफल करता है, बिजनेस में भी विघ्न लाता है। मैं खुद भी परेशान हूं, दूसरे भी परेशान हैं। अपने आंतरिक प्योर कॉन्साइंस के अनुसार आपका अंदर का आवाज आपको क्या कह रहा है, अपनी डायरी में नोट कर ले। इस कमजोरी को मुझे खत्म करके जाना है। स्वयं के अंदर इतना ज्ञान, गुण और शक्ति मुझे भरनी है जो ये कमी खत्म हो जाए। और मैं जरूर कर सकूंगा। ओम शांति।
सन